योनच याति विकारम युवति जन कटाक्ष बाण विद्धूपी सत्वेव शूर शूरो रणशूरो नो भवेत शूरः। बोले कि जो स्त्रियों के कटाक्ष बाण माने तिरछी नजरों से विद्ध होकर भी विकार को प्राप्त नहीं होता वो वीरों में वीर है और युद्ध में वीरता दिखाने वाला कोई वीर नहीं है। माने स्त्रियां जिसको विचलित नहीं कर सकी वो वीरों में भी वीर है। इति ब्रह्मचर्य प्रतिमा अष्टमो धर्म। इस प्रकार ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा जो है ये यहाँ पूर्ण होती। अथारंभ विरति प्रतिमा वक्तुम आरभते। अब आरंभ विरति प्रतिमा कहना प्रारंभ करते हैं। जो आरंभण कुणदि अन्नम कारदिनेव अनुमन्ने हिंसा संतठमणु चक्तारंभो हवे सोहु। जो आरंभ स्वयं नहीं करता, अन्न को नहीं कराता और नहीं अनुमोदन करता है, हिंसा संतठमणु, कैसा है वो श्रावक? हिंसा से संत्रस्त है मन जिसका, भयभीत है मन जिसका। सोहु चक्तारंभो हवे, वही आरंभ त्यागी यानी अष्टम प्रतिमा का धारक होता है। ही निश्चितम सत्यक्तारंभ असी मशी कृषि वाणिज्य आदि आरंभ विनिवृत्त प्रतिमा परिणत श्रावको भवेत। यही आरंभ विनिवृत्त प्रतिमा रूप परिणत श्रावक होता है। सक वो कौन? यह आरंभम, जो आरंभ का त्याग कर देता है, स्वयं आत्मना न करोती, ये सब नाम दे दिए आरंभ के, असी मशी कृषि वाणिज्य आदि, गृह व्यापार जम प्रारंभम, स्वयं आत्मना न करो, अपने द्वारा नहीं करता, न विदधति च पुनः अन्यम परपुरुषम प्रेर्य आरंभम नैव कारयति। प्रेरणा देकर के किसी और से भी नहीं कराता। आठवीं प्रतिमा वाला आरंभ किसी और से कराता भी नहीं है। आरंभ कुर्वंतम नरम न अनुमोदयति, और आरंभ करने वाले मनुष्य की अनुमोदना या समर्थन भी नहीं करता। पर पुरुषम आरंभम पाप कर्म सावध्यादिकम कुर्वंतम दृष्ट्वा अनुमोद मनः अनुमोदन मनः अनुमोदना मनः हर्षादिकम न प्राप्नोति इत्यर्थ। खुशी को प्राप्त नहीं होता। जैसे किसी के 10 कारखाने चल रहे हैं, वो आकर के बताता है कि मां, किसी ऐसे आठवीं प्रतिमा वाले के सामने आकर के बताता है कि देखो भाई हमारे तो 10 कारखाने बहुत बढ़िया चल रहा है, इतने पेट्रोल पंप है, ये है वो है सब, तो बोलता आ वाह, ऐसी खुशी प्रकट नहीं करता, उसका समर्थन अनुमोदन नहीं करता। हर्षादिकम न प्राप्नोति, कीदृश सहन कैसा होते हुए? तो बोले हिंसा संत्रस्त मनाः, हिंसा से संत्रस्त यानी भयभीत है मन जिसका। हिंसा या संत्रस्तम त्रासम भयम प्राप्तम मनो यस्य से हिंसा संत्रस्त मनाः। हिंसा या प्राणातिपातात भयभीत चित्त, हिंसा से या प्राणातिपात यानी वही प्राणियों को पीड़ा पहुंचाना, इससे भयभीत है चित्त जिसका। तथा चोक्तम चुका भी है, रत्नकरण का श्लोक दे रहे हैं, सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभतो विपारमति प्राणातिपात हेतुर यु सावारंभ विनिवृत्त। सेवा यानी सर्विस, अब सर्विस छोड़ना पड़ती है, आठवीं प्रतिमा में व्यक्ति सर्विस नहीं कर सकता, नौकरी छोड़ना पड़ेगी। कृषि खेती किसानी का भी त्याग करना पड़ेगा। वाणिज्य यानी व्यापार दुकान धंधे वगैरह भी छोड़ना पड़ेंगे। प्रमुखाद मतलब आदि, ऐसे और भी जितने आरंभ हैं उन सब का व्यापारमति त्याग कर देता है। क्यों? प्राणातिपात हेतु, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं जीवों को बाधा होती है। सर्विस करो तो होगी, दुकान चलाओ तो होगी, या किसी भी कारण से कृषि करो तो भी, तो वह आरंभ विनिवृत्ति यानी अष्टम प्रतिमा का धारी श्रावक होता है। इत्यारंभ विरति प्रतिमा नवम श्रावक धर्म है। अब इसके आगे बतला रहे हैं, अतः परिग्रह विरति प्रतिमा गाथा द्वयेन विवृणोति। अब दो गाथाओं के द्वारा नवमी प्रतिमा परिग्रह विरति प्रतिमा का वर्णन कर रहे हैं, विवरण कर रहे हैं। जो परिवज्जयि गंथम अभ्यंतर बाहिरं च सानंदो पावंति मन्न मानो निगंथो सुहवे नाणी। अब देखो एक निर्ग्रंथ तो मुनि होते हैं और एक ये नवी प्रतिमा वाला श्रावक होता है निष्परिग्रह। इसमें क्या करता है वो, सानंदो अभ्यंतर बाहिरंच गंथम परिवज्जी, आनंद पूर्वक अंदर के और बाहर के परिग्रह को छोड़ देता है। क्या मानकर, पावंती मंडवाणो, ये सब परिग्रह पाप रूप है। परिग्रह से कभी पुण्य नहीं होता, पुण्य के फल से परिग्रह हो सकता है, होता है। पुण्य जिसका ज्यादा उदय में होगा तो फिर वो इतना ठाट बाट उसके पास हो सकता है, लेकिन परिग्रह का फल पुण्य नहीं होता, परिग्रह पाप है। तो पाप समझ करके जो अंदर बाहर सब प्रकार के परिग्रहों को सानंदो परिवज्जी आनंद के साथ छोड़ देता है। अब देखो आनंद के साथ छोड़ना और वैसे ही छोड़ना इनमें बहुत अंतर है। आनंद पूर्वक छोड़ना अलग होता है। तो वो सुनाणी वह ज्ञानी जीव निगंथो हवे, निर्गंध यानी परिग्रह रहित श्रावक होता है। कपड़े वगैरह रहेंगे उसके पास, लेकिन बाकी जो परिग्रह बैंक बैलेंस है या मकान के ऊपर अपना नाम लिखा हुआ है वो सब हट जाएगा। नवी प्रतिमा में अपने नाम से मकान नहीं हो सकता, अपना बैंक बैलेंस नहीं हो सकता, और फिर और भी सारी चीज़ें जो है, जो कुछ भी अपने नाम से, 10 प्रकार की जमीन अपने नाम से नहीं हो सकती, दूसरों के नाम से कर सकता है उसके पहले, सब छोड़ देता है। 10 प्रकार के परिग्रह, सच ज्ञानी भेद ज्ञानी विवेक संपन्न निर्ग्रंथ ग्रंथिभ्य बाह्याभ्यंतर परिग्रहेभ्य निष्क्रांत निर्गत निर्ग्रंथ। वह भेद ज्ञानी ज्ञानी विवेक संपन्न निर्ग्रंथ यानी ग्रंथ से परिग्रह से बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहों से निष्क्रांत होता है। निरादयो निर्गमाद्यर्थे पंचम्या इति पंचमी तत्पुरुष। ये पंचमी तत्पुरुष कर दिया व्याकरण से, बतला दिया कि भाई इसमें निष्क्रांत अर्थ निकलेगा नी अगर लगाया होता है। निर सकह वो कौन, तो यह अभ्यंतरंग ग्रंथम, अंदर के परिग्रह कौन से, मिथ्यात्वेद हास्यादि षट कषाय चतुष्टयम राग द्वेषौच संगाहस्यु रंतरंगाश चतुर्दश। अंदर के परिग्रह ये 14 होते हैं। देखो मेद मिथ्यात्व, एक परिग्रह मिथ्यात्व, फिर वेद, वेद का मतलब स्त्री पुरुष या नपुंसक जो भी भाव आपके अंदर हो वो, कदाचित इसमें कर्म भूमि में भेद भी होता है, शरीर स्त्री का होते हुए भी भाव पुरुष के हो सकते हैं, कभी शरीर पुरुष का होते हुए भी भाव स्त्री जैसे हो सकते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, तो वो बिल्कुल वो मर्दानगी वाली बात आ गई, मतलब पौरुष उसके अंदर था, तो ऐसे दृष्टांत दिया था। और फिर कभी कभी पुरुष लोग भी बिल्कुल स्त्रियों जैसे रहते हैं भावों से, शरीर पुरुष का है लेकिन भाव स्त्री जैसे हैं, तो ये वेद कहलाता है। फिर हास्यादि षट, हास्य है, रति है, अरति है, शोक भय और जुगुप्सा है। फिर कषाय चतुष्टयम, 4 कषाय होती है, क्रोध मान माया और लोभ। फिर राग द्वेषौच, और राग द्वेष ऐसे 14 अंदर के परिग्रह होते हैं। इस प्रकार चतुर्दश प्रकार परिग्रहम परिवर्जयति, 14 प्रकार के अंदर के परिग्रहों को छोड़ता है। च पुनः बाह्यं ग्रंथम, और किसको छोड़ता है, बाह्य परिग्रह। कौन से बाह्य परिग्रह, क्षेत्रम वास्तु धनं धान्यम द्विपदं च चतुःपदं यानं शया शय्यासनं कुप्यं भाण्डं चेति बहिर्दश। क्षेत्र यानी जमीन है, वास्तु का मतलब होता है मकान दुकान आदि, धन का अर्थ होता है धन, धान्य का अर्थ होता है अनाज, द्विपद यानी 2 पैर वाले नौकर नौकरानियां, और चतुःपद यानी जानवर हैं। यान का अर्थ होता है यात्रा के जो साधन होते हैं गाड़ियां वगैरह वो, और शय्यासन, शय्यासन मतलब पलंग और कुर्सी, और कुप्य का मतलब होता है कपड़े और फिर डेकोरेशन के जो सामान होते हैं घर के, शोकेस में जो रखने के सामान होते हैं ना वो, और भांड का अर्थ होता है बर्तन। ऐसे 10 प्रकार के परिग्रहों को भी छोड़ देता है। अब वो कोई भी उसका नाम अगर लिखा भी हो तो फिर वो भूतकाल हो गया, वो अब उसको घिस करके कहाँ कहाँ तक मिटाओगे। मान लो 50 बर्तन पे उसका नाम लिखा हो कि अमुक चंद्र अमुक चंद्र अमुक चंद्र, तो क्या करे, बस अब मेरा कुछ नहीं है, बस मेरे नाम से जो भी है चलो शायद जाने दो, मेरा परिग्रह नहीं है। इति दश भेद भिन्न परिग्रह परिवर्जित, अभी घर का त्याग नहीं किया है लेकिन स्वामित्व का त्याग कर दिया, अब मैं मालिक नहीं हूं इन चीजों का। त्यजति ग्रंथम ग्रथनाति अनुबध्नाति संसारम इति ग्रंथ, अब जो संपर्क कराए किसका, संसार का, उसको ग्रंथ कहते हैं। तम परिवर्जयति त्यजयति, उसको छोड़ देता है, त्याग देता है। यह श्रावक की दीक्षा, जो श्रावक छोड़ रहा है वो कैसा है, सानंद आनंदेन शुद्धिद रूपो आनंदेन, कैसा बना रूप, शुद्ध चिद्रूपोत्थानानंदेन, कैसे निकलेगा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप से उत्थ यानी उत्पन्न, अथवा शुद्ध चैतन्य रूप से उत्थान है जिसका, ऐसे आनंद से, सुख से, वर्तमान सानंद, जो सुखी है वो। ये बहुत अच्छी पंक्ति है, क्योंकि अभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि श्रावकों को होता ही नहीं है चैतन्य का आनंद। कई लोग देखो क्या लड़ाई के ऐसे मुद्दे हैं जैन समाज के पास, कि मतलब जिसका खाली दिमाग सो शैतान का घर, जबरदस्ती मतलब इन बातों को लेकर विवाद, कि अरे श्रावकों में कभी नहीं होता, बोले वो आनंद आ ही नहीं सकता, बोले कैसे आ सकता है, श्रावक तो विषय कषायों में ही फंसा रहता है। ऐसा नहीं, देखो परिग्रहों का त्याग करने के समय नवीं प्रतिमा में क्या बता रहे हैं, सानंद आनंद सहित। कौन सा आनंद यहाँ पर, कौन सा आनंद, मिठाइयाँ खाने का आनंद थोड़ी है यहाँ पर तो परिग्रह छोड़ने का, और कैसा, शुद्ध चिद रूप से है उत्थान जिसका, ऐसे आनंद से, ऐसे सुख से, वर्तमान सानंद। पुनः कीदृक, और कैसा होता है, परिग्रहम पापम इति दुरितम इति मन्यमान, जानन, परिग्रह को पाप ऐसा जानता हुआ, तथा चोक्तुम च, कहा भी है। नवी प्रतिमा का स्वरूप देखिए, और ग्रंथों में क्या है, तो ये वसुनिधि श्रावकाचार्य की गाथा दे रहे हैं, मोतूर्ण वत्थमेतम परिग्रहम जो विवज्जये शेषम तत्थ विमुच्छम न करे दी जान न करे, करे तक के पढ़ना, तत्थ विमुच्छम न करे दिजान सो सावो नवमो, 12 मात्रा करे तक होती थी। तो वस्त्र मात्र को छोड़कर जो बाकी परिग्रहों का विवज्जय त्याग कर देता है, और तत्थ भी उन वस्त्रों पर भी मुच्छम न करे दी, मूर्छा नहीं करता, लगाव नहीं रखता, सो नवमो सावो वो जान, उसको नवमा श्रावक जानना चाहिए, नवमी प्रतिमा जाननी चाहिए। तथा च, और भी समंतभद्र स्वामी ने क्या कहा, बाह्येषु दशसु वस्तुषु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरतः स्वस्थः संतोषपरः परिचित्त परिग्रहाद् विरतः। बाह्य में जो 10 प्रकार की वस्तुएं होती है, जो अभी ऊपर गिना करके आए हैं, ख्याल में है ना, जमीन है, मकान दुकान है, वो सब, उनमें ममत्व को छोड़कर निर्ममत्व रहता, मेरा कुछ नहीं है, इस प्रकार जो हो गया स्वस्थ, स्वस्थ हो गया, क्योंकि इतनी सारी चीजें लगी थी साथ में, जब तक दिमाग में भार तो था, जब तक परिग्रह होता है तब तक भारी रहता है मन, आप मानो न मानो, आप देख लो अपनी आत्मा से पूछ के देखो, जब तक परिग्रह होता है तब तक भारी रहता है मन। अब क्या होता है कि आचार्य जब प्रवचन करते हैं, सामने कोई घड़ी रख देते हैं, अब प्रवचन खत्म हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं, आचार्य तो पहले ही उठ के चले जाते हैं, और वो घड़ी जिसने रखी वो नहीं जाता वापस, वो जब तक उठा ना ले तब तक उसको चैन कहाँ। ये परिग्रह जो होता है वो भारी होता है, तो उसके दूर हो जाने पर स्वस्थ है, अब सही तंदुरुस्ती आई, और संतोष पर, संतोष में तत्पर, अथवा स्वस्थ का अर्थ हो गया अब वो स्व में स्थित हुआ। अब तक क्या था, उन 10 परिग्रहों में ही स्थित था, पर में स्थित था, अब स्व में स्थित हुआ, अपने में आया वापस लौट करके, अभी तक बाहर भटक रहा था, संतोष पर, और संतोष में तत्पर हो गया, ठीक है नहीं है मेरे पास, मैंने छोड़ दिया है, मैं संतुष्ट हूँ। सानंदों का अर्थ संतोष पर, परिचित्त परिग्रह विरत, और अपने चित्त से संबंध रखने वाले परिग्रह से भी वो विरत हो जाता है, माने छोड़ने के बाद भी वो ये नहीं बोलेगा कि अरे मैं लखपति था क्या समझते तुम, कोई बोले मैं करोड़पति था, मैं अरबपति था, छोड़ दिया अब तो क्या, तुम क्या समझते क्या हो मेरे को, तो समझते क्या मतलब, आज भी तुम्हारे अंदर वो गुरूर है जिसका त्याग कर दिया, उसका मान अभी छोड़ा नहीं। मान करो मत त्याग का, करो मान का त्याग, मान करो मत, त्याग का करो, मान का त्याग। तो परिचित्त परिग्रह, ये बहुत सुंदर शब्द रखा है आचार्य संबंधभद्र स्वामी ने, अपने चित्त में भी जो परिग्रह है पुराना अतीत काल संबंधी। चार बंगले थे अपने, बोले एक सूरत में था, एक मुंबई में था, और एक यहाँ था, वहां था, अहमदाबाद में भी था। और क्या प्लॉट था मेरा, बहुत बड़ा प्लॉट मैं दे दिया, मंदिर बनवाने के लिए दे दिया, स्कूल बनवाने के लिए दे दिया, अस्पताल के लिए दे दिया, मेरा ही तो है ये सब, अभी भी मेरा ही है, फिर छोड़ा कहाँ। परिचित्त परिग्रह, चित्त में भी वो चीज़ छूट जाए तो वो नवी प्रतिमा होती है। मामूली बात नहीं है, क्या प्रतिमाएं, अभी अपन खेल मत समझो उसको। तुम्हारी कितनी प्रतिमा? 10 प्रतिमा। और तुम्हारी कितनी प्रतिमा है? 9-8, ऐसे मजाक नहीं है। ये प्रतिमा बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए मुनि प्रतिक्रमण में 15 दिन में एक पाठ पढ़ते हैं, वो एक लाइन पढ़ते हैं कि अगर श्रावक 11 प्रतिमा धारण करने वाले श्रावकों के प्रति भी अगर मेरे मन में ऐसा भाव आया था कि अरे ये क्या है, तो फिर उसका मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का मार्ग है वो। 11 पद हैं श्रावकों के, तो उसने अगर एक पद में भी कदम बढ़ाया है तो फिर उसका अनादर करने का मुनि को कोई अधिकार नहीं है। भले मुनि पद बड़ा हो, लेकिन बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे का अनादर करो। अभिमान करने के लिए नहीं है वो बड़ा पद, वो बड़ा पद में तो अभिमान और कम होना चाहिए। अभी वो पद बड़ा इसलिए है क्योंकि अभिमान कम है। अगर अभिमान ज्यादा हो जाए पद का तो फिर बात ही उल्टी हो गई ना। तो इस तरह नवी प्रतिमा का स्वरूप है। फिर आगे क्या करें, बाह्य ग्रंथ विहीना दरिद्र मनुजा स्वपापतः संति, बहुत सुंदर श्लोक है आर्य छंद में। बाह्य ग्रंथ विहीना दरिद्र मनुजा स्वपापतः संति, पुनरभ्यंतर संगत त्यागी लोकेति दुर्लभो जीवः। बाह्य परिग्रह से रहित दरिद्र मनुष्य अपने पाप के कारण बहुत सारे पाए जाते हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे गरीब लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है। अब 10 प्रकार के परिग्रह गिनाए थे यहाँ पर, तो एक मकान है, दुकान है। अब किसी ऐसे व्यक्ति के पास मकान दुकान कुछ नहीं है तो क्या वो निर्ग्रंथ है? बोले कि नहीं है, उसके अंदर कषाय तो है, उसके अंदर वो राग तो है, इसलिए वो परिग्रह ही है। लेकिन अंदर से इसको छोड़ने वाला लोक में बहुत दुर्लभ है वैसा जीव मिलना, दुर्लभ अति दुर्लभ हो जीव, अत्यंत दुर्लभ है परिग्रहों को अंदर से छोड़ने वाला। क्रोधादि कषायणाम आर्थ रौद्रयो हो हिंसादि पंच पापानाम भवस्य जन्म भूमि दूरोत्सारित धर्म शुक्ल परिग्रह इति मत्वा दशविध बाह्य परिग्रहाद विनिवृत्त स्वस्थ संतोष पर भवती इति। क्रोध आदि जो कषाय हैं उनका आर्त रौद्र, ये दो ध्यान का और हिंसादिक पंच पापों का और भवस्यच और संसार का भी कारण कौन है, माने इन सब की जन्मभूमि क्या है? क्रोध की जन्मभूमि क्या है? मान की जन्मभूमि क्या है? पांच पापों की जन्मभूमि क्या है? आर्त रौद्र ध्यान की जन्मभूमि कौन सी है? और दूरोत्सारित धर्म शुक्ल, धर्म और शुक्ल ध्यान को दूर से खदेड़ देने वाला कौन है? तूल परिग्रह, परिग्रह है। इति मत्वा, ऐसा जानकर दशविध बाह्य परिग्रहाद विनिवृत्त, 10 प्रकार के बाह्य परिग्रहों का त्यागी बन जाता है, स्वस्थ अपने में आ जाता है, स्वस्व स्थित हो जाता है, संतोष परो भवति, संतुष्ट हो जाता है। बाहिर गंथ विहीना दलिद मणुवा सहावदो हुंती अभ्यंतर गंथम पुण न सकदे को विछंडे दुम। बाह्य परिग्रहों से रहित दरिद्र मनुष्य स्वभाव से होते ही हैं। दरिद्र मनुष्य स्वभाव से, मतलब उनकी दरिद्रता ही बाह्य परिग्रह से उनको दूर रखती है, लेकिन अंदर का परिग्रह छोड़ने में कोई समर्थ नहीं होता। वो जितने दरिद्र लोग हैं वो अंदर से राग द्वेष को छोड़ने में समर्थ नहीं होते, वो दूसरे परिग्रह वालों को देख करके अंदर ही अंदर कुछ का कुछ सोचते रहते हैं। मतलब उनका राग द्वेष छूटता थोड़ी है, भले उनके पास परिग्रह ना हो, ಸ್ವಭಾವತ ನಿಸರ್ಗತ ಪಾಪಾದ್ವಾ ದರಿದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ದ್ರವ್ಯ ಪುರುಷ ದರಿದ್ರಿಣ ನರಾ ಭವಂತಿ. ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪುರುಷ ಯಾ ಮನುಷ್ಯ ದರಿದ್ರಿ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೇ. ಕಥಂ ಭೂತ ಕ್ಯಾಸೆ ಹೋ ದರಿದ್ರಿ, ಬಾಹ್ಯ ಗ್ರಂಥವೀತ ಉನ್ಕೆ ವಿಹೀನ, ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾಸ್ತು ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹ ರಹಿತ. ಜಮೀನ್ ಮಕಾನ್ ದುಕಾನ್ ಧನ ಧಾನ್ಯಾದಿ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹಸೆ ರಹಿತ ಹೋತೆ. ಪುನಃ ಅನೂಚ ಕೋಪಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪುಮಾನ್, ಔರ್ ಕೊಯ್ ಐಸಾ ಮನುಷ್ಯ ನ ಶಕ್ನೋತಿ ನ ಸಮರ್ಥ ಹೋಗಿ, ಕೊಯ್ ಐಸಾ ಮಿಲ್ತಾ ನೀ ಉನ್ ದರಿದ್ರೋ ಮೇ ಭೀ ಕಿಂ ಕರ್ ತುಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ ಸಮರ್ಥ ನೀ ಹೋತಾ. ಛಂಡಯಿ ತುಮ್ ತ್ಯಕ್ತು ಮುಕ್ತಿ ಛೋಡ್ನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ ಸಮರ್ಥ ನೀ ಹೋತಾ. ಕಂ ತಮ್ ಕಿಸ್ಕೋ ನೀ ಛೋಡ್ತು ಪಾತ. ಅಭ್ಯಂತರಂ ಗ್ರಂಥಂ ಭೀತರ್ಕೆ ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾದಿ ಪರಿಗ್ರಹಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಲಾಷ ಲಕ್ಷಣಂ ಪರಿಗ್ರಹಂ ವಾ. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಾದಿಕ್ಕೋ ನೀ ಛೋಡ್ ಪಾತಾ, ಇಂದ್ರಿಯೋ ಸಂಬಂಧಿ ಅಭಿಲಾಷಾಂಕೋ ನೀ ಛೋಡ್ ಪಾತಾ. ವಾ ಮನೋಭಿಲಾಷ ರೂಪಂ ತ್ಯಕ್ತುಂ ಕ ಸಮರ್ಥ, ಮನ್ಕಿ ಅಭಿಲಾಷಾಂಕೋ ಛೋಡ್ನೆ ಮೇ ಕೌನ್ ಸಮರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೈ. ಭಿಖಾರಿ ಭೀ ಸಪ್ನೆ ಮೇ ಕೈ ಬಾರ ರಾಜಾ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೈ, ಕೈ ಬಾರ ಮಾರುತಿ ಮೇ ಘೂಮತಾ ಹೈ ಸಪ್ನೆ ಮೇ. ತೋ ಯೇ ಅಭಿಲಾಷಾಂ ಜೋ ರಹತಿ ಹೈ ವೋ ನೀ ಛೂಟ್ ಪಾತಿ. ಅಪಿತು ನ ಇತಿ ಪರಿಗ್ರಹ ವಿರತಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಶ್ರಾವಕಸ್ಯ ದಶಮಧರ್ಮ ಅಥಾನುಮೋದನ ವಿರತಿ ಗಾಥಾ ದ್ವೈನ ವಿವೃಣೋತಿ. ಅಬ್ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ ಯೇ ತೋ ನವಮಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಹೋ ಗಯಿ. ಅಬ್ ದಸಮಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಜೋ ಹೈ ಅನುಮೋದನ ವಿರತಿ, ಇಸ್ಕೋ ದೋ ಗಾಥಾಓ ಸೇ ಬತಲಾತೆ ಹೈ, ಛೋಟಿ ಛೋಟಿ ಹೈ. ಜೋ ಅಣುಮಣಣಂ ನ ಕುಣದಿ ಗಿಹತ್ಥ ಕಜ್ಜೇಸು ಪಾವಮೂಲೇಸು ಭವ್ಯವ್ವಂ ಭಾವಂತು ಅಣುಮಣ ವಿರೋ ಹವೇ ಸೋದು. ಮಜೆದಾರ ಗಾಥ ಹೈ. ಜೋ ಗಿಹತ್ಥ ಕಜ್ಜೇಸು ಪಾವಮೂಲೇಸು, ಪಾಪ ಮೇ ಕಾರಣಭೂತ ಜೋ ಗೃಹಸ್ಥಿ ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಹೋತೆ ಹೈ, ಜೈಸೆ ಶಾದಿ ಬ್ಯಾಹ ಹೈ ಯಾ ಫಿರ್ ಔರ್ ಭೀ ದೂಸರೆ ಜಮೀನ್ ಜಾಯದಾದ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಹೈ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯೋ ಕೆ ಕಾಮ ಹೈ, ಔರ್ ದುನಿಯಾ ಭರ್ ಕೆ ಜೋ ಲೌಕಿಕ ಗೃಹಸ್ಥಿಯೋ ಕೆ ಕಾಮ ಹೋತೆ ಹೈ, ಉನ್ ಮೇ ಜೋ ಅಣುಮಣನ ನ ಕುಣದಿ, ಜೋ ಸಮರ್ಥನ್ ನಹೀ ದೇತಾ. ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ಸಮರ್ಥನ್ ನಹೀ ದೇತಾ. ಭವ್ಯಮಂ ಭಾವಂತು, ಜೋ ಕೇವಲಿ ಭಗವಾನ್ ನೇ ಇನ್ಕಾ ದೇಖಾ ಹೈ, ಹಿತ್ ಯಾ ಅಹಿತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾ ಅನಿಷ್ಟ ವಹೀ ಹೋಗಾ. ಮೈ ಕ್ಯೂ ಬೀಚ್ ಮೇ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಕರೂ, ಮೈ ಕ್ಯೂ ಇನ್ಕೆ ಬೀಚ್ ಮೇ ಪಡೂ. ಮೈನೆ ತೋ ಪರಿಗ್ರಹ ಕಾ ಭೀ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ ದಿಯಾ, ಆರಂಭ ಕಾ ಭೀ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ ದಿಯಾ, ಅಬ್ ಮೈ ಇನ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನ್ ಕೋ ಭೀ ಛೋಡ್ ದೇತಾ ಹೂಂ. ತೋ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಭೀ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ ದೇತಾ ಹೈ. ಪಹಲೆ ತೋ ಕ್ಯಾ ಥಾ ಕಿ ನವಮಿ ಪ್ರತಿಮಾ ತಕ ಅಗರ್ ಕೋಯಿ ಪೂಛೆ ಕಿ ಐಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೈ ಹಮೇ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ತೋ ಕುಛ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದೇ ಸಕ್ತಾ ಥಾ. ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ರಹೀ ಹೈ, ಹಮೇ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಆಪ್ ತೋ ಬಡೇ ಜಾನ್ಕಾರ ಹೈ, ಅನುಭವಿ ಹೈ, ಕುಛ ಬತಲಾ ದೋ. ಬತಲಾ ಸಕ್ತಾ ಥಾ, ಲೇಕಿನ್ ದಸಮಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಮೇ ಬೋಲ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಅಬ್ ಮುಝೆ ಇಸ್ಮೇ ಕುಛ ಮುಝೆ ಮತ್ ಬೀಚ್ ಮೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕರೋ, ಮೇರೆ ಸೇ ಮತ್ ಪೂಛೋ, ಕಿಸಿ ಸಲಹಾಕಾರ ಸೇ ಪೂಛನಾ ಹೋ ತೋ ತುಮಾರಿ ಮರ್ಜಿ, ಲೇಕಿನ್ ಅಬ್ ಮೈನೆ ಇನ್ ಸಬ್ ಚೀಜೋ ಕಾ ತ್ಯಾಗ ಕರ್ ದಿಯಾ, ಅಬ್ ಮೇ ಇನ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಭೀ ನೀ ಕರೂಂಗಾ. ಗೃಹಸ್ಥಿ ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಮೇರಾ ಕೋಯಿ ಸಮರ್ಥನ್ ನಹೀ ರಹೇಗಾ. ಹಮ್ ವಹಾ ಮಕಾನ್ ಲೇನೆ ಜಾ ರಹೇ ಹೈ, ದಾದಾಜಿ ಆಪ್ಕಾ ಕ್ಯಾ ಕಹನಾ ಹೈ. ಅಬ್ ದಾದಾಜಿ ದಸಮಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಕೆ ಧಾರಿ ಹೈ, ಬೋಲೇಂಗೆ ಕಿ ಮೇರಾ ಕುಛ ನಹೀ ಕಹನಾ ಹೈ, ತುಮೇ ಜಾನಾ ಹೈ ತೋ ಜಾಓ, ಔರ್ ಹಮೇ ಲೇ ಜಾನಾ ಹೈ ತೋ ಲೇ ಜಾಓ, ಲೇಕಿನ್ ಹಮಸೆ ಪೂಛೋ ಮತ್ ಕಿ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಆಪ್ಕಿ ಕ್ಯಾ ರಾಯ ಹೈ. ರಾಯ ನೀ ದೇಂಗೆ, ರಾಯ ಬಹಾದುರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೇ ಬಹುತ್ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಕರಮ್ ಚಂದ ಕಮ್ ಹೈ. ಕಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ನೇ ಕಹಾ ಥಾ ಕಿ ರಾಯ ಬಹಾದುರ್ ಕದಮ್ ಕದಮ್ ಪರ್ ಮಿಲೆಂಗೆ ಆಪ್ಕೋ, ರಾಯ ದೇನೆ ಮೇ ಜೋ ಬಹುತ್ ಬಹಾದುರಿ ದಿಖಾತೆ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಕರಮ್ ಚಂದ ಕಾ ಮತಲಬ್ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಬಹುತ್ ಕಮ್ ಹೋತೆ ಹೈ. ತೋ ಐಸೆ ಪಾಪ ಮೂಲಕ ಗೃಹಸ್ಥಿಯೋ ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮೇ ಜೋ ಸಮರ್ಥನ್ ನಹೀ ದೇತಾ, ದೇಖೋ ಕಹಾಂ ಜಾಕರ್ ಕೆ ಛೂಟಾ ಯೇ. ನವ ಪ್ರತಿಮಾ ತಕ್ ಪರಿಗ್ರಹ ವಗೇರೆ ಸಬ್ ಛೋಡ್ ದಿಯೇ ಥೇ, ಆರಂಭ ಭೀ ಛೋಡ್ ದಿಯೇ ಥೇ, ಲೇಕಿನ್ ಅಭಿ ಕಹೀಂ ಕಹೀಂ ವೋ ಪೂಛತಾಛ ಕರ್ನೆ ಪರ್ ಸಮಾಧಾನ ದೇ ದೇತಾ ಥಾ, ಕಭಿ ಸಮರ್ಥನ್ ಭೀ ಕರ್ತಾ ಥಾ ಕಿ ನಹೀಂ ವಹಾಂ ನಹೀಂ ಕರ್ನಾ ಯಹಾಂ ಠೀಕ್ ರಹೇಗಾ, ಯೇ ಸಬ್ ಬೋಲ್ ಲೇತಾ ಥಾ, ಲೇಕಿನ್ ದಸಮಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಮೇ ವೋ ಭೀ ಛೋಡ್ ದಿಯೇ. ಭವ್ಯಮಂ ಭಾವಂತು, ಭವಿತವ್ಯ ಜೋ ಹೈ ಜೋ ಹೋನಹಾರ ಹೈ ವೋ ಹೋಗಿ, ಅಬ್ ಮುಝೆ ಇಸ್ಮೇ ಬೀಚ್ ಮೇ ಕ್ಯೂ ಡಾಲ್ತೆ ಹೋ. ಸ ಶ್ರಾವಕ ಆಹಾರಾದೀನಾಂ ಆರಂಭಾಣಾಂ ಅನುಮನನಾದ್ ವಿನಿವೃತ್ತೋ ಭವತಿ, ಔರ್ ಆಹಾರಾದಿಕ್ ಸೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಅನುಮತಿ ಭೀ ನಹೀ ದೇತಾ. ಜೋ ಗುಣ ಚಿಂತದಿ ಕಜ್ಜಂ ಸುಹಾಸುಹಂ ರಾಯ ದೋಸ ಸಂಜುತ್ತೋ ಓಗೇಣ ವಿಹೀನಂ ಸಕುಣದಿ ಪಾವಂ ವಿಣಾ ಕಜ್ಜಂ. ಜೋ ಪುಣ ಚಿಂತದಿ ರಾಯ ದೋಸ ಸಂಜುತ್ತು, ಅಬ್ ದೇಖೋ ದಸಮಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಧಾರಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ ಏಕ ಉಪದೇಶ ಹೈ ಕಿ ಅಗರ್ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಸೇ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೋಕರ್ जो शुभ और अशुभ कार्यों के बारे में मन से भी चिंतन करता है, अनुमोदन करता है, और कैसे कार्य है वो उपयोगीण विहीन, जो उसके लिए कोई उपयोग वाले नहीं है, निरुपयोगी है, अनुपयोगी है, तो सो बिना कज्जम पावम कुणदी, वो बिना मतलब पाप कमाता है। अब उसको कुछ कर लेना देना तो है नहीं उन गृहस्थियों के कार्यों से, लेकिन फिर भी मन से अनुमोदन करके व्यर्थ का पाप कमा लेता है। सब प्रसिद्ध करोति विदधाति किंतत, वो करता है, क्या करता है, कार्यम बिना पाप, बिना काम के पाप करता है। साध्यम अंतरेण फलम बिना दुरितम करोति, जिसका कोई फल सार नहीं निकलने वाला ऐसा पाप करता है। सकह वो कौन, यह पुनः चिंतयति ध्यायति, जो चिंतन करता है, मन लगाता है, किंतत किसका, तो शुभाशुभ कार्य अच्छे बुरे काम का, कौन से काम, तो देखो नाम गिना रहे, पुत्र जन्म, पुत्र का जन्म, फिर अशन, अशन यानी भोजन वगैरह है, फिर चूड़ाकरण, चूड़ाकरण का अर्थ होता है क्या बोलते हैं उसको, चूड़ाकरण का अर्थ क्या है, विवाह, अध्यापन, विवाह अधिकम, विवाह तो अलग से लिखा हुआ है, चूड़ाकरण का अर्थ अलग है, माने ये जो सिर मुंडन वगैरह होता है ना वो सब कराना, अध्यापन या फिर टीचरशिप करना, विवाहादिकम कि भाई तुम अपने बच्चे को इतना पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, यहाँ पर कॉमर्स में डालो, बोले आजकल कॉमर्स में अच्छा चलता है, या फिर ऐसा कुछ भी जो भी उसके दिमाग में सूझ जाए, ऐसे सलाह मशविरा करने लग जाए फोकट में, तो बोले कि ऐसे काम जो करता है आदिकम शुभम कर्म, ये तो अच्छे काम है, शुभ कर्म है, और फिर अशुभ कर्म कौन से हैं, पर पीड़न, दूसरों को पीड़ा देना कि भाई उसने तुमको ऐसा बोला है ना, तुम ऐसा करो, देखो योजना से काम करोगे तो तुम्हारा काम सफल होगा, और फिर वो योजना बना करके दे रहा है कि तुम, उसने तुमको ऐसा बोला ना, ठीक है अभी तुम तुरंत जवाब मत दो, कुछ समय निकल जाने दो, और उसके बाद फिर इस विधि से काम करना, बोले ऐसी सलाह देना, ये सब अब ठीक है, भले वकील रहे हो पहले, अब 10 प्रतिमा धारण कर ली तो अब इन सब पचड़ों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर पीड़न, मारण, किसी को मारने के बारे में, बंधाधिकम, तुम इस तरीके से चलोगे तो उसको पक्का जेल होगी, मैं मेरी बात तो मानो तुम तो वो सब पूरे उपाय बता देता है कि इस तरीके से तुम्हें करना पड़ेगा। फिर क्षति खनन आदिकम, जमीन की खुदाई वगैरह करवाने की बात, ये सब अशुभ कार्य चिंतित, इन अशुभ कार्यों का जो चिंतन करता है, कीदृशम तत्, और कैसे हैं, उपयोगी है साध्य साधकत्वेन विहीनम, जो साध्य या साधक रूप से किसी काम के नहीं है, निरर्थकम इत्यर्थ, निरर्थक इन बातों का जो चिंतन करता है, कि दृक्षसन कैसा होते हुए चिंतन करता है, राग द्वेष संयुक्त है, शुभेशु कार्येषु राग, शादी ब्याह आदि के संबंध में राग होगा, प्रीति, और अशुभेशु कार्येषु द्वेष, और अशुभ कार्य में मारने पीटने के बारे में सोचेगा तो फिर द्वेष होगा, अप्रीति होगी, तो इनसे संयुक्त होकर के वो सब ऐसी बातों का विचार करता है। एवं भूतस्य पुंस अनुमानन विनिवृत्ति ही कथम भवति, बोले कि उसकी 10वीं प्रतिमा कहाँ से हो सकती है, जो ऐसे प्रपंचों में उलझ गया है वो 10वीं प्रतिमा का धारी कैसे हो सकता है, ली होगी कभी 10वीं प्रतिमा, लेकिन अगर इन कामों में लग गया है तो फिर अब कथम भवति, उसकी 10वीं प्रतिमा कैसे हो सकती है। तथा वसुनिंदिना चोक्तम च, कहा भी है, पुट्ठो वा नियय परे ही च सगिह कज्जेषु अनुमननम जो नकुणदि वियानसो सावो दहमु, वो 10वां श्रावक है जो पुट्ठुआ पूछने पर या बिना पूछे, नियय परे ही अपने या दूसरों के, सज्ञह कज्जेषु अपने मतलब गृहस्थ संबंधी कार्यों में समर्थन नहीं करता, वो 10वां श्रावक है। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे वैहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनुमति विरतः समन्तव्यः, जो आरंभ के प्रति, आरंभ माने कमाई के जो साधन होते हैं उनको आरंभ कहते हैं, या घर गृहस्थी संबंधी जो भोजन पकाने आदि के लिए जो पंचसूना होते हैं उनको भी आरंभ कहते हैं, फिर परिग्रह या फिर 10 प्रकार के परिग्रह के प्रति, एहि केषु कर्मसु वा शादी ब्याह आदि जो लौकिक कार्य हैं उनके प्रति, यस्य समधि यस्य अनुमति ही नास्ति, जिस श्रावक की अनुमोदना नहीं है अर्थात समर्थन नहीं है, स समधि वो समता बुद्धि वाला अनुमति विरत मंतव्य, 10वीं प्रतिमाधारी जानना चाहिए, माने उसी को 10वीं प्रतिमा वाला जानना चाहिए जिसका इन प्रपंचों में कोई हस्तक्षेप नहीं है। माने बात तो मतलब ये है कि टाइटल से काम नहीं चलता जैन दर्शन में, जब तक आचरण में नहीं है तो फिर कोई लाभ होने वाला नहीं है। जैन दर्शन आत्मशुद्धि का दर्शन है, अपनी आत्मा को पवित्र बनाने की बात है। एक प्रतिमा और है, समय देख लो, ले ले, ग्यारहवीं प्रतिमा, हमारी प्रतिमा, ग्यारहवीं प्रतिमा ले लेते हैं। अथ गाथा द्वयेन उद्दिष्ट विरति प्रतिमां प्रपंचयति। अब दो गाथाओं के द्वारा उद्दिष्ट विरति नाम की जो प्रतिमा है उसको विस्तृत करते हैं। जो नवकोडि विशुद्धम भिक्खायरणेन भुञ्जते भोज्यम जायण रह्यम जोग्यम उद्दिष्टाहार विरदोसु। जो नवकोडि विशुद्धम, जो भोज्यम भुञ्जते, जो भोजन करता है, कौन सा भोजन करता है, नवकोडि विशुद्धम, नव कोटि से जो पवित्र है, यानी मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से जो भोजन शुद्ध है, उसी को भिक्खायरणेन भुञ्जते, भिक्षाचर्या से ग्रहण करता है। यानी जैसे साधु भिक्षा वृत्ति से आहार लेते ना, वैसे ही क्षुल्लक अवस्था में फिर निमंत्रण नहीं स्वीकार कर सकते। दसवीं प्रतिमा में तक तो अगर कोई बुला ले वो ठीक है, ये नहीं बोलेंगे दसवीं प्रतिमा में कि तुम आज हमारे लिए त्योहार का दिन है, कुछ ख्याल रखना। वो जैसा मिलेगा वैसा कर देंगे, उसमें मतलब उनकी वो नहीं रहेगी अनुमोदना कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, बुलाना पड़ेगा। दसवीं प्रतिमा में बुलाकर भोजन करा दो तो कर लेंगे। और ग्यारहवीं प्रतिमा में क्या कह रहे हैं कि भिक्षाचर्या से वो निकलेंगे यहां से भिक्षा वृत्ति से, और किसी के घर पर जाकर के वो भोजन ग्रहण करेंगे भिक्षाचर्या पूर्वक। लेकिन कैसा करेंगे भोजन, जोग्यम, अपने पद के योग्य भोजन करेंगे, या आगम में जिसको उचित बताया गया वही आहार ग्रहण करेंगे। और जायण रहियम, याचना से रहित, यानी मांग करके नहीं लेंगे। मांग करके नहीं लेने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आहार दान दे रहा है कोई, और आहार दान देते देते उसने शुरू में कई बार थाली दिखाते हैं लोग, तो आहार देते समय अगर कोई चीज़ छूट रही हो तो फिर मंगवा करके उसको ग्रहण नहीं करेंगे। जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें दिखाई, अब मंगोड़ी नहीं दे रहा वो देने वाला बेचारा, तो फिर ऐसे इशारा करके उसको बुलवाएंगे नहीं। जायण रही हूँ, याचना से रहित आहार लेंगे, सो उद्दिष्ट आहार विरोधो, वो उद्दिष्ट आहार विरत होते हैं। ये क्षुल्लक अवस्था का, एलक अवस्था का, क्षुल्लिका अवस्था का वर्णन है कि कैसा आचरण होना चाहिए उनका। देखिए, सश्रावक उद्दिष्ट आहार विरत, आहार उनका जो होगा उद्दिष्ट आहार नहीं हो सकता। उद्दिष्ट, उद्दिष्ट का मतलब क्या है, पात्रम उद्दिश्य निर्मापित, माने उन पात्र के उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन, उनके नाम से बना हुआ भोजन उद्दिष्ट है। सचासो आहारश्च, वो आहार जो होता है जो उनके उद्देश्य से बनाया गया है उद्दिष्ट आहार, उद्दिष्ट आहार होता है। तस्मात उद्दिष्ट आहारात विरत, उस उद्दिष्ट आहार का त्यागी होते हैं, निवृत्त, उससे निवृत्त होते हैं, उद्दिष्ट आहार विरत। सोदिष्ट पिंडोपति, पिंडोपधि शयन वरासन वसत्यादेर विरत भवेत। ये पांच चीजों को नहीं लेंगे, अपने नाम से बनी हुई पांच चीजों को, जैसे अपने उद्दिष्ट पिंड यानी भोजन है, उपधि यानी, उपधि का मतलब होता है उपकरण, जैसे मान लो ये पाटा वगैरह तखत है कि भाई ये इन महाराज के लिए बनाना है अपने को, तो उन क्षुल्लक जी के लिए अगर उनके नाम से कोई चीज़ बनी होगी पाटा वगैरह, तो फिर वैसे आगे बतला रहे हैं शयन, शयन का अर्थ है पाटा, और वरासन का मतलब अच्छा आसन, बैठने का आसन, और उपधि का मतलब दूसरे जो उपकरण हैं, पेंसिल वगैरह हैं या शास्त्र वगैरह हैं, वो अगर इनके नाम से तैयार किए गए हैं तो फिर वो ग्रहण नहीं करेंगे। और वसत्यादे, और इनके नाम से अगर कोई कमरा बनाया हो तो फिर वो कमरा भी वो ग्रहण नहीं कर सकते, इनके त्यागी होते हैं। सक वो कौन, तो यह भुंगते अश्नाति भक्षयति, जो भोजन करते हैं, किंतत किसका भोजन करते हैं, भोज्यम भोज्यम भोजनम आहारम, जो खाने के योग्य आहार है उसका चार प्रकार का भोजन है, अशन पान स्वाद्य खाद्य स्वाद्यादिकम। अशन यानी दाल रोटी भात वगैरह और सब्जी भी ले लो उसमें। फिर पान का अर्थ होता है पीने योग्य पदार्थ, दूध है, रस है और भी दूसरे जो पदार्थ होते हैं पीने योग्य। फिर स्वाद खाद्य का अर्थ होता है मिठाइयाँ, और स्वाद्य का अर्थ होता है इलायची है, सौंफ है या लवंग है, ये चीज़ें आदि शब्द से ऐसे चार प्रकार के आहार हैं। केन वो भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, बोले भिक्षा चरणेन भिक्षाचर्या से ग्रहण करते हैं, आहारार्थम आहार के लिए, पर ग्रह गमनेन परिभ्रमणेन दूसरों के घर भ्रमण करके जाते हैं और फिर आहार ग्रहण करते हैं। ग्यारहवीं प्रतिमा में कीदृक्षम तत् भोज्यम वो भोजन कैसा होता है, बोले नव कोटि विशुद्धम नव प्रकार से शुद्ध होता है, मनोवचन काये ही प्रत्येकं कृत कार्य तानुमोदने ही नव कोटि भी नव नवोत्कृष्ट प्रकार ही विशुद्धम दोष रहितम निर्मलम भोज्यम निर्दोषम। नौ प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए, मनः कृतम भोज्यम मनः कार्यतम भोज्यम मनोनुमतम भोज्यम, वचन कृतम भोज्यम वचन कार्यतम भोज्यम वचनानुमोदितम भोज्यम, काय कृतम भोज्यम काय कार्यतम भोज्यम कायानुमोदितम भोजनम भोज्यम इति नवोत्कर्ष प्रकार विशुद्धम। इन दोषों से रहित होना चाहिए। मनः कृत का मतलब क्या होता है, मन से बनाया हुआ भोजन। मन से बनाया हुआ भोजन का मतलब आज खीर मिल जाए तो अच्छा रहेगा, खीर मिल गई, आज कोई खीर बना ले तो अच्छा रहेगा, ऐसे अगर भावना आ गई और फिर पता नहीं कैसे क्या तरंग चली तो फिर खीर बना ली किसी ने, तो फिर वो मन कृत अगर है, मन उसमें लगा था आपका, तो फिर उस चीज़ को छोड़ देना, उसको आहार में नहीं लेना। फिर मन कारितम भोज्यम, अब मन से अगर किसी को बनवा लो आप, किसी से मन के माध्यम से किसी के द्वारा बनाई हुई चीज़, यानी मन में सोचा कि अगर ये अपना परिचित व्यक्ति आ जाए तो फिर उससे तो अपन बोल सकते हैं, अब यहाँ जो अपरिचित श्रावक है उनको कैसे बोले, मन के द्वारा वचन के द्वारा ये सब। फिर कायकृत भी हो सकता है कदाचित, कभी खुद जा करके चौके में बनाने लग जाए ऐसी परिस्थिति, तो ये सब निषिद्ध है। मैंने क्षुल्लक अवस्था में, क्षुल्लिका अवस्था में, एलक अवस्था में ये नौ प्रकार का जो भोजन है वो निषिद्ध है, मतलब नौ कोटि से शुद्ध होना चाहिए भोजन, यानी उनको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वहाँ जो मिल रहा है सो ले लेना चाहिए चुपचाप। मनसा कृत भोजनम इत्यादय नव प्रकार है ज्ञातव्या, ये नव प्रकार है। अथवा अन्नम पवित्रम सत दातारम पात्रम च पवित्रम करोति। अब देखिए नव प्रकार और भी दूसरे ढंग से बतला रहे हैं कि शुद्ध का मतलब क्या है, पवित्र। अब देखो कैसे पवित्र होता है, अन्न अगर जो दाता है ना, जैसे क्षुल्लक जी के आहार हो रहे हैं और देने वाले ने अगर अन्न पवित्र दिया उनको, तो वो क्या करता है, पवित्र अन्न, वो अन्न खुद पवित्र है, वो देने वाला भी पवित्र है, पात्र को भी पवित्र कर देता है वो, मतलब शुद्ध मन से शुद्ध भावना से दिया हुआ अन्न पात्र को भी पवित्र करता है, माने उसकी साधना में वृद्धि करता है। फिर दूसरा क्या विकल्प बनाया, ये तीन भेद हो गए, अन्न की पवित्रता, देने वाले की पवित्रता और पात्र की पवित्रता। फिर दाता शुद्ध सन, देने वाला अगर शुद्ध होता है तो अन्नम पात्रम च शुद्धम करोति, वो शुद्ध तो है ही है, लेकिन वो दी जाने वाली जो वस्तु है, जैसे अकृत पुण्य की माँ ने खीर दी थी और इसी प्रकार वो एक दादी माँ ने मेथी के दाने दिए थे, वो कथा हमने नहीं सुनाई यहाँ, सुनाई थी, तो ऐसी बहुत सारी कथाएं आती है कि वो साधारण से साधारण चीज़ें दे दे तो भी उसकी पवित्र भावना के कारण वो वस्तु भी शुद्ध हो जाती है और फिर वो जिसको दी है वो भी शुद्ध हो जाते हैं। अब कहो हलवा पूड़ी देने पर शायद उसका मन डगमगा जाए, लेकिन साधारण सा भोजन दे दिया पवित्र भावना के साथ तो उसकी भावना पवित्र है तो वो शुद्ध है और दिया जाने वाला भोजन भी शुद्ध है और फिर जिसको दे रहे हैं वो भी शुद्ध हो जाता है। ये तीन प्रकार की हो गई। फिर पात्रम शुद्धम सत, अथवा वो जो साधु हैं जो लेने आए हैं क्षुल्लक जी, एलक जी या क्षुल्लिका माता, वो अगर शुद्ध हैं तो दातारम अन्नम च शुद्धम करोति, दातार को भी शुद्ध बना देते हैं और अन्न को भी शुद्ध कर देते हैं। इति नवा नूतना कोटि ही प्रकर्षतया विशुद्धम, इस प्रकार नव कोटि का मतलब ये नवीन कोटिया माने प्रकर्ष, उससे, कोटि का मतलब उत्कृष्टता, उससे शुद्ध। पुनः कीदृशम, और कैसे होते हैं? यांचा रहितम मह्यम अन्नम देही थी, मुझे दे दो थोड़ा सा अनाज, ऐसी मांगने की प्रवृत्ति से रहित होते हैं। आहार प्रार्थनार्थम द्वारोद्घाटन शब्द ज्ञापनम इत्यादि यांचया यांचया प्रार्थनाया रहितम, आहार की प्रार्थना करने के लिए किसी का दरवाजा खटखटाने लग जाए, वो पड़गान के लिए नहीं खड़ा तो अरे भाई दरवाजा खटखटाने लग गया, तो ये चीज नहीं चलती यहाँ पर क्षुल्लक अवस्था में, ऐसी प्रार्थना से रहित होते हम। पुनः कीदृक्षम, और कैसे? तो योग्यम मकारत्रय रहितम, योग्य आहार लेंगे कौन सा? तीन मकारों से रहित होगा, चर्म जल, घृत तैल, चमड़े के पात्रों में रखा हुआ पानी, या अब कई बार कुएं में से निकालते हैं ना पानी, तो वो चमड़े के उससे निकालते हैं, कई कुओं में निकालते हैं, तो उससे रहित होना चाहिए। उसमें रखे हुए घी तेल और रामट आदि भी अस्पृष्टम, रामट का मतलब वो रहट होती है जो अरहट बोलते हैं ना इसको, उसका स्पर्श भी ना हुआ हो, और रात्रावकृतम, जब तक सूर्योदय नहीं हुआ है तब तक पानी भी गर्म नहीं करने का, सूर्योदय के पहले अगर वो पानी गर्म किया हुआ है तो फिर उसके लेने के योग्य नहीं रहा। रात्रि में जो न बनाया गया हो, और चांडालिनी चलोक मार्जार, चांडाल नीच लोक मार्जार शुनक आदि स्पर्श रहितम, चांडाल और फिर नीच लोक हैं, और मार्जार याने बिल्ली वगैरह हैं, और शुन याने कुत्ते वगैरह हैं, इनके स्पर्श से रहित होना चाहिए, यानी ये छू न ले उस भोजन को, वो भोजन साधु क्षुल्लक जी वगैरह ले सकते हैं। यति योग्यम भोजन, कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि मुनि महाराज के योग्य जो आहार है वही क्षुल्लक क्षुल्लिका और ऐलकों के योग्य होता है।